ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिरे भवति नैष्टिकी। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आप लोग इतना भाग्यवान है कि जो कि स्वयं जगन्नाथ आप लोग का पर कृपा बरस रहा है, जो कि दो दिन का पहले कोई प्रसाद भेजा है। अब मैं सोचा दो दिन का पहले बांट भी सकता था, लेकिन वो आपका भाग्य में है। काल जैसा वशिष्ठ महाराज बोल रहे थे ना, अरना लिखा हुआ ना, जिसका नाम लिखा होता है उसी को ही मिलता है। सही, कोई भक्त अभी से बांट दें, जो बाद में आएंगे उनको मिले नहीं मिले से तो ये नहीं होता, पहले प्रसाद। कितने भक्त प्रसाद का व्याकुल में है, कितने भक्त कथा का व्याकुल है। हरि बोल। सभी लोग को आवाज क्लियर आ रहा है? क्लियर आवाज आ रहा है? प्रभु जी ने ये आवाज को क्लियर किया, उनके लिए एक बार हरि बोल बोलिए। बहुत दिन लग रहा था, यहां से दो बॉक्स हटा दिए, वो कुंभ मेला चला गया, इसलिए सभी लोग को सुनने में थोड़ा मुश्किल था। लेकिन प्रभु जी को हम लोग को थोड़ा डांट पीट के रखे है, मतलब ठीक करो ये साउंड को थोड़ा। साउंड ठीक है ना, सभी को आवाज क्लियर आ रहा है? जोर से बोलिए हरि बोल। तब हम भागवत का ऊपर चलते हैं। दोनों के साइड में मिल जाएगा। आप लोग मेरा पीछे श्लोक उच्चारण कीजिए। ज्यादा नजर प्रसाद का ऊपर मत दीजिएगा, अभी कथा का ऊपर नजर दीजिए, कथा रस खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 श्लोक नंबर कितना है देखिए, कितना लिखा हुआ है? 28 नंबर श्लोक है। आया नहीं अभी? अट्ठाईस नंबर श्लोक मेरा पीछे बोलिए। नमः आदाय विजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राण इंद्रिय मनः बुद्धि विकारहि व्यक्तिम युषे। नमादाय विज्ञाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोर्बुद्धि विकार व्यक्ति मीयुषे। नमादाय विज्ञाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनो बुद्धि विकार व्यक्ति मीयुषे नमाद्याय विद्याय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनो बुद्धि विकार व्यक्ति मीयुषे शब्दानुवाद नमः। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अध्याय आदि जीव को, बीजाय विराट विश्व के बीज को, ज्ञान ज्ञान के, विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के, मूर्तये अर्चा विग्रह या स्वरूप को, प्राण प्राणों के, इंद्रिय इंद्रिय के, मनः मन के, बुद्धि बुद्धि के, विकार ही रूपांतर से, व्यक्तिम अभिव्यक्ति युषे जिसने प्राप्त कर लिया है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की इस मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूं, जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलाप के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। तात्पर्य, वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा से होता है कि परम पुरुष ही समस्त सृष्टि के आदि स्रोत है, जन्मादस्य। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या ब्रह्मा जी परम पुरुष है? नहीं, परम पुरुष तो कृष्ण है। ब्रह्मा कृष्ण से ही अपना मन बुद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और तब ये गौण सृष्टा या इस ब्रह्मांड के शिल्पी बनते हैं। इस संबंध में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि संयोग वश विशाल पिंड के विस्फोट से उत्पन्न नहीं हुई। वैदिक जिज्ञासु ऐसे निरर्थक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। प्रथम उत्पन्न जीव तो ब्रह्मा है, जिसे भगवान ने पूर्ण ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान की, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। यद्यपि ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न प्राणी है, लेकिन वे स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि वे अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सहायता से बुद्धि प्राप्त करते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होता, अतः वे भगवान से प्रत्यक्ष के रूप में हृदय के माध्यम से अपनी बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में की जा चुकी है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी को विराट जगत का आदि कारण कहा गया है। यह भौतिक जगत में उनके पद का सूचक है। ऐसे अनेक नियंत्रक है जिन सबों को परमेश्वर विष्णु ने उत्पन्न किया। इसका चित्रांकन चैतन्य चरितामृत में वर्णित एक घटना में हुआ है। जब इस ब्रह्मांड विशेष के ब्रह्मा को कृष्ण ने द्वारिका में आमंत्रित किया, तो उन्होंने सोचा कि वे एकमात्र ब्रह्मा है। अतः जब कृष्ण ने अपने सेवक से पूछा कौन से ब्रह्मा भेंट करने द्वार पर आए हैं, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उसने उत्तर दिया कि चारों कुमारों के पिता ब्रह्मा जी द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से पूछा कि आपने यह क्यों पूछा था कि कौन से ब्रह्मा आए, तो भगवान ने बताया कि ऐसे लाखों ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मांड की लाखों है, ब्रह्मांड भी लाखों है। तब कृष्ण ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया, तो सारे ब्रह्मा तुरंत उनसे भेंट करने आए हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा ने चार मुख होने के कारण उन अनेक ब्रह्माओं के मध्य अपने को अत्यंत तुच्छ प्राणी समझा, जिनके अनेक मुख थे। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड का एक एक शिल्पी ब्रह्मा होते हैं और कृष्ण उन सबके आदि स्रोत है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन सगणा ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो कि भागवत कक्षा में आने के लिए। और आप लोग को ये कथा लगभग 28 नंबर श्लोक चल रहे हैं, मतलब 28 दिन तक आप लोग को सुन चुके हैं। अभी जैसा चल रहा है 28 मनंतर है, तो वो 28 मनंतर में आप लोग सुन लिए। तब आप लोग को मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर आपको मेरा को जवाब देना पड़ेगा क्या सुने हैं। क्योंकि कथा में सुनना मतलब कथा को ही मनोरंजन के लिए नहीं होता है, मनोमंजन के लिए होता है। कथा किसके लिए होता है? और आज का समय पे कथा से वो मनोरंजन चलता है, भागवत कथा मनोरंजन चल रहा है। मनोमंजन करना है मतलब मन को उसमें स्थिर करना है, माइंड को पूरा फिक्स करना है सुनने के लिए और सुन के हृदय में धारण करना। जिस प्रकार यहां पे बताते हैं तेने हृदय आदि कवे मुह्यंति जत सुरैया, भगवान ने जितने सब दिव्य ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुन करके उसको हृदय में धारण किया, हृदय में धारण किया और वही ज्ञान को प्रकट किया। फिर तो यहां पे पहला शब्द क्या आता है, देखिए पहले शब्द क्या आता है, नमः मतलब क्या है? नमस्कार। कौन किसको नमस्कार कर रहा है? ब्रह्मा जी को ना? हिरण्यकेशव को नमस्कार कर रहे ब्रह्मा जी, उल्टा कर रहे ना? कौन किसको नमस्कार कर रहा है? हिरण्यकेशव को नमस्कार कर रहा है। किसको? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को वो सोचता है ये मेरे भगवान है और उनके लिए वो भी भगवान है। और हमको जानकारी मिलता है भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। हिरण्यकेशव के लिए भगवान कौन थे? इसलिए यहां पे लिखते हैं ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं और उन्होंने आदि पुरुष कह करके संबोधन भी करता है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी को आदि पुरुष कौन कहा? हिरण्यकेशिपु। किंतु स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? गोविंदम आदि पुरुष। देखिए डिफरेंट कितना आया, हिरण्यकेशिपु के लिए ब्रह्मा जी आदि पुरुष है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी के लिए आदि पुरुष कौन है? गोविंद, गोविंद आदि पुरुष तमह भजामी। और स्वयं ब्रह्मा जी भी गोविंद का भजन कर रहा है और हिरण्यकेशिपु किसका भजन कर रहा है? ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है। अरे इतना दिन भजन करने के बाद भी मरना पड़ा, ये बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए और सरल भी है। मैं आपको कैसा समझाऊं? देखिए ये इतने साल तक तपस्या किया और तपस्या छह प्रकार की होता है, ध्यान रखिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, तपस्या छह प्रकार की होता है। ये तो नमस्कार कर दिया, पहले तपस्या के बारे में पहले जान लीजिएगा। छह प्रकार तपस्या होता है, एक ही होता है शारीरिक तपस्या, एक होता है मानसिक तपस्या शारीरिक तपस्या होता है, मानसिक तपस्या होता है, और क्या होता है, बातचीत का तपस्या होता है। गीता पढ़ेंगे तब उसमें आपको पूरा क्लियर जानकारी मिलेगा। मैं सारा गीता का यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। 70 अध्याय श्लोक नंबर 15 से शुरू होता है, 14 से, 17 अध्याय श्लोक नंबर 14 से शुरू होता है। 6 श्लोक में पूरा वर्णन है 6 प्रकार की तपस्या के बारे में, 6 प्रकार की तपस्या के बारे में। पहले शारीरिक का तपस्या होता है, और इसके बाद वाणी का तपस्या होता है, इसके बाद मानसिक तपस्या होता है, इसका बाद क्या होता है, तमोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और सतोगुणी तपस्या। लेकिन हिरण्यकशिपु कौन सा तपस्या किया था? तमोगुणी तपस्या किया था। और हिरण्यकशिपु का जो तपस्या था, वो तपस्या में स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए। क्यों प्रसन्न होकर आए? क्योंकि सारा देवता लोग किसके पास गए थे? ब्रह्मा जी के पास है, उसको बुलाकर लाना पड़ेगा। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं इंद्रदुम्न राजा ब्रह्मलोक गए थे, ब्रह्मा जी को बुला के मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। और यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए देवता लोक ब्रह्मा जी के पास गए थे और हाथ जोड़ के प्रार्थना किए। वहां पे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना किए देवता लोक को। ब्रह्मा जी कहते हैं आपका पोस्ट पोजिशन ले लेंगे, थोड़ा आप चलिए हिरण्यकश्यप को समझाने के लिए। तो फिर स्वयं ब्रह्मा जी देवता लोग को बात को मान करके नीचे उतरते हैं और हिरण्यकश्यप का सामने जाते हैं। हिरण्यकश्यप का शरीर संपूर्ण खोखला बन चुका है, खोखला समझते हैं ना, खोखला बन चुका है, फिर भी अस्थि बचा था। और ये सत्ययुग में तपस्या था, सत्ययुग में तपस्या किए, सिर्फ शरीर खोखला बन चुका है। उसी टाइम कहते हैं हम लोग अभी कलयुग में अर्णगत प्राण है और सत्ययुग में अस्थिगत प्राण था और उसमें प्राण रहता था अस्थि में। तब तपस्या 6 प्रकार का आप लोग बाद में पढ़ लेना है उसका। और मैंने बताना चाहता था प्रार्थना कब होता है। यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं ना, पहले नम शब्द आता है, नमस्कार करता है मतलब पहले प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना तब होता है जब लघुता द्वारा पूर्णता से अनुग्रह का आग्रह किया जाता है, अनुग्रह किया जाता है। प्रार्थना प्रभु और भक्त का आत्मीय वार्तालाप, प्रार्थना मतलब भगवान और भक्त का जो आत्मीय वार्तालाप। आप लोग नॉर्मल देखिए, जब भी हमें भगवान के सामने खड़े होते हैं ऐसा तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने मात्र से ऑटोमेटिकली आंख हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल है ना, ऑटोमेटिकली आंख बंद होता है। हाथ जोड़ने मात्र आंख हमारा बंद हो जाता है, किसको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, ये इसका साथ जड़ित है। क्यों आंख बंद होता है? आप चाहते हैं इंटरनल भगवान के साथ बात करने के लिए, इंटरकनेक्शन करना चाहते हो, तब इसलिए पटापट आंख बंद होता है। तब आत्मीय वार्तालाप होता है, आप भगवान के साथ उसी टाइम पे वार्तालाप करते हैं। और प्रार्थना निर्बल की पुकार है, और प्रार्थना निराश मन द्वारा सबल की तलाश है, और प्रार्थना सांसारिक झंझट से उत्पन्न परवशता को परमात्मा के चरण में समर्पित कर करके निश्चिंत हो जाने का प्रयास है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं। जब भी हमें हमारा सामने कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाता है, हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, हो सकता है उम्र में बड़े। और इसलिए कहते तपस्या, शारीरिक जो तपस्या होता है उसी में शारीरिक तपस्या का जो श्लोक लिखा गया 17 और 14 में कहते देव दिजो गुरु प्रज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तपोच्यते। उसी में 8 प्रकार की शारीरिक तपस्या होता है। 8 प्रकार की क्या है? शारीरिक तपस्या। पहले शारीरिक तपस्या से पहला शब्द आता है देव। देव मतलब देवता लोग को पूजा करना चाहिए, भगवान विष्णु को भी पूजा करना चाहिए, यह शारीरिक तपस्या है पूजने मात्र से। और दीजो, दीजो मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, यह भी शारीरिक तपस्या है। गुरु को पूजन करना चाहिए, यह भी शारीरिक तपस्या है। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब विद्वान, उनका भी पूजन करना चाहिए। और शौच शारीरिक तपस्या है, शौचता, शौचता रखना चाहिए। और छठा है सरलता, और सातवां है ब्रह्मचर्य और आठ है अहिंसा। किसी भी जीव का प्रति क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और शरीर में स्वच्छता रखना चाहिए, शुद्धता रखना चाहिए। शुद्धता नहीं रखेंगे तब हमेशा के लिए मन में पवित्रता नहीं आएगी, अपवित्रता मन की भावना आएगा। इसलिए प्रभुपाद की जगह पे लिखे हैं, शिवजी ने नारद जी का पवित्रता का नियम का उपदेश दिया। शिवजी ने नारद जी को उपदेश दे रहा है, प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति सुबह 3:22 से 5:46 के अंदर जगना चाहिए। ये टाइम को याद रखिए, 3:22 से 5:46 के अंदर आप नहीं जागते हैं तब आपका अंदर में हमेशा के लिए अपवित्रता रहेगा। कितना भी प्रयास कर लो शुद्धता नहीं हो सकता है। क्यों इसी टाइम पे? क्योंकि वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और व्यक्ति सोना नहीं चाहिए। और हमारा भगवान का सेवा 3:24 से शुरू हो जाता है। इसीलिए वो समय नहीं सोना चाहिए, इसी समय पे हमको शज्ञा त्याग करना चाहिए। इसलिए तो प्रभुपाद हमारा संस्था में क्या है, प्रभुपाद ने इमीडिएटली 3 अलार्म लगाकर सोइए। 3 उठ जाओगे तब जरूर आप लोग 4 पहुंच जाओगे मंगल आरती में, और मंगल आरती में भाग लिया मतलब आपका दिनचर्या ऑटोमेटिक मंगल होगा। मंगलमय कार्य है, सुबह का समय का नाम है मंगल आरती करना है। दिनचर्या आपको चलता है प्रातः मुहूर्त से, इसलिए सुबह का समय बहुत पावरफुल है। सुबह कभी सोना नहीं चाहिए, शज्ञा को त्याग करना चाहिए, नहीं तो उसी टाइम हमारा दुश्चिंता आएगा, अपवित्रता मन में भ्रांत धारणा आएगा। यह शारीरिक तपस्या, इसके लिए हमको, और संसार में लोग भी तपस्या करते हैं, भक्त लोग तपस्या कर रहे हैं और अभक्त भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं, सोने के लिए भी टैबलेट खाकर सोना पड़ रहा है, वो भी एक ही प्रकार की तपस्या है ना। और हम लोग को जल्दी जल्दी जाके मंगलाती जाना है, ये भी हमारा के लिए तपस्या है, दोनों तो तपस्या कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है, इसमें बहुत अंतर है। देखिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने का टाइम पे देवता लोग जाके ब्रह्मा जी का पास से प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आना पड़ा। कोई ऐसा शास्त्र में वर्णन है देवता लोग के लिए भगवान दो बार आए? नहीं, असुर लोग के लिए कोई असुर तपस्या किया और उसके लिए देवता 2-3 आए धरती पे? नहीं है, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं। लेकिन कोई भक्त भगवान के लिए तपस्या किया तब भगवान को आना पड़ा, एक बार नहीं बारंबार। प्रमाण दो, बहुत प्रमाण है। ये देखिए एक बात, हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या किया, जोर से बोलिए, 36,000। 36,000 तपस्या करने के बाद तो उसको मरना पड़ा, लेकिन ध्रुव महाराज कितने साल तपस्या किया, जोर से बोलिए, 6 तपस्या करने के नाते उनको कौन सा जगह मिला? कितने साल के लिए राज्य करना पड़ा? 36,000। हिरण्यकशिपु तपस्या और ध्रुव महाराज का तपस्या में अंतर देख लीजिएगा। ये 36,000 तपस्या करने के बाद मरना पड़ा, और ध्रुव महाराज 6 तपस्या करके 36,000 राज्य भोगना पड़ रहा है और भगवान वरदान दे रहे हैं। भक्त के लिए भगवान 2 भी आते हैं। भक्त थोड़ी सी सेवा करें, थोड़ी से रौंच मात्र से, रेत मात्र से सेवा करने मात्र से भगवान गदगद हो जाते हैं धरती पे, उन्हीं के लिए आना पड़ता है। एक ही छोटे से कहानी बताने से आप लोग को समझ पाएंगे। ये त्रेता युग का घटना है। भगवान रामचंद्र जब वनवास गए थे तो वनवास का टाइम पे माता सीता को जल की जरूरत पड़ी, क्योंकि माता सीता को प्यास लगी, तो भगवान राम ने वन देवता को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे वन देवी जल कहाँ मिले? तो ऐसा प्रार्थना करते हैं स्वयं भगवान भी माता सीता के लिए, धर्म पत्नी के लिए। तो जल कहाँ तलाश कर रहे हैं, वन देवी को प्रार्थना कर रहे भगवान राम ने। जब प्रार्थना किए साक्षात वहां पे एक मयूर प्रकट हो गए और मयूर प्रभु से मिलते हैं, भगवान राम से मिल के कहते हैं, प्रभु क्या चाहिए? भगवान राम कहते हैं, पानी कहाँ मिलेगी? चार तरफ तो जंगल जंगल ही है, पानी कहाँ मिलेगी? देखिए भगवान क्या लीला करना चाहते हैं। क्या भगवान स्वयं वहीं पे भी खोद करके जल प्रकट कर सकते थे, जिसी प्रकार राधा कुंड को प्रकट किए, मानसी गंगा को प्रकट किए, तो वहीं पे खोद कर प्रकट कर सकते थे, लेकिन भगवान लीला रचना चाहते थे। तो भगवान राम ने मयूर के साथ वार्तालाप किया, तो मयूर ने कहा, मैं पानी का जो निर्दिष्ट जगह है और आपको पहुंचा सकता हूं। मयूर कहता है, लेकिन आप मेरा पीछे पीछे चलना है। भगवान राम कहते हैं, मैं तो चल कर जाऊंगा। मयूर कहता है, मैं उड़ कर जाऊंगा, लेकिन रास्ता कैसा मालूम पड़ेगा? रास्ता कैसा मालूम पड़ेगा? आप ऊपर उड़ कर जाओगे, घना जंगल है, मैं चल कर जाऊंगा, दिशा कैसा मालूम पड़ेगा? मयूर कहता है, मैं अपना एक एक पंख नीचे गिराते रहूंगा और आप उसी पंख को देखते देखते चलना, तो सही जगह पे पहुंच जाएंगे। तो तब मयूर ने उड़ना चालू किया और भगवान राम ने चलना चालू किए। तो मयूर उड़ते उड़ते एक एक पंख गिराते रहे और चलते रहे, और भगवान राम पंख को देखते देखते सही जगह पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद मयूर कहता है, प्रभु मेरा समय हो चुका है, मेरा समय हो चुका है, जाना है, मतलब ये शरीर छोड़ना है। भगवान राम कहते हैं, किसीलिए? जब तक मेरा समय नहीं होता है, मैं नीचे पंख नहीं गिराता हूं। जब तक ये मयूर का पंख गिरता है उसका समय होने का अनुसार, जब तक उसका समय नहीं होता है पंख नहीं गिरता है, और बाय चांस समय नहीं हुआ और मेरा पंख गिराया तो मेरा मृत्यु जल्दी से जल्दी हो जाता है। मैं अभी शरीर छोड़ना है। भगवान राम ने कहते हैं, अब जितना सेवा किया इसी सेवा के लिए मेरा दोबारा आना पड़ेगा और जो पंख आप नीचे गिराया था वही पंख मैं सिर में धारण करूंगा। भगवान राम फिर द्वापर में क्या बनकर आए? कृष्ण बनकर आए, जो पंख गिरा हुआ था और वह पंख को धारण किए। भगवान का छोटी सी सेवा करने मात्र से और हमको कितने जन्म लगेगा कृष्ण के पास जाने के लिए। हम एक माला जप करते हैं, हमारा बहुत बड़ा तपस्या हो गया, मंगला आरती आ जाते हैं, ये भी हमारा के लिए बहुत बड़ा तपस्या हो जाता है। सोचिए थोड़ा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, यहां पे उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ माना, लेकिन जो दैवी शक्ति का प्रभाव जानना चाहिए, देवता लोग को मुख्य नहीं दे सकते हैं, देवता लोग को मुक्ति नहीं दे सकते हैं, सिर्फ भगवान ही मुख्य दे सकते हैं। ये श्लोक में इस प्रकार लिखा जाता है, नाहम कैबल्य दो राजन परतंत्र स्वभावत स्वतंत्र सर्वभूतानम परमात्मा रमापति ही। स्वभाव से ही परतंत्र हम देवी देवता मुख्य देने में असमर्थ नहीं है, एकमात्र स्वतंत्रता तो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा श्री लक्ष्मीपति है। भगवान लक्ष्मीपति जो है वो हमको मुक्ति दे सकते हैं और संसार में कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद अध्याय 21 और श्लोक दशम स्कंद अध्याय नंबर 51 और श्लोक नंबर 20 में वर्णन आता है, जब मुचुकुंद जी को वर देते समय देवता कहे, क्या कहे, कहते हैं वरों वृणीशो भद्रम ते रुत्ते कैवल्य मद्यनः एक एवेश सुरतस्य भगवान विष्णुर्वयः। आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम कैवल्य मुख के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते, क्योंकि कैवल्य मुख देने में के सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु ही है। मुक्ति सिर्फ भगवान ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन हम लोग फिर देवता का शरण पे जाते हैं, देवता का शरण में जाते हैं। गीता महात्म्य कहते हैं एक देव देव की पुत्र है, वह एक देव है जो कि देव का पुत्र कृष्ण, उनका शरण पे जाना चाहिए, इनके शरण पे जाना चाहिए। और फिर कहते हैं कोई हमें असमर्थ व्यक्ति का शरण पे चला जाते हैं, असमर्थ व्यक्ति का शरणागति हो जाता है, वह हमको सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है, सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति था गुजरात के, और वो व्यक्ति शीतला देवी का भक्त थे। शीतला देवी होता है ना, उनका भक्त मतलब उनको आराधना किया, आराधना करने मात्र से शीतला देवी भी साक्षात प्रकट हो गए। और साक्षात प्रकट हो जाने के बाद शीतला देवी कहते हैं आपका तपस्या से मैं प्रसन्न होगी और आप वर मांगो, आप वर मांगो। तब वो व्यक्ति ने क्या वर मांगता है, बोला मेरा को एक घोड़ा दे दो। क्या दे दो? घोड़ा दे दो। तो शीतला देवी क्या कहते हैं, मैं आपको घोड़ा दे सकता हूं और मैं फिर तो स्वयं मैं गधा में बैठा हूं, मैं आपको कैसा घोड़ा दे सकता हूं। और खुद जब और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से क्या वर मांग रहा है, अमर मांग रहा है, मरना नहीं चाहता है, सही, अमर अमर मांग रहा है। जितने सब ये देखेंगे, और कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर दूसरा का शरणागत तो होता है वो सबसे बड़ा मूर्खता है। कोई व्यक्ति दूसरा का शरण पे जाता है ये सबसे बड़ा मूर्खता है। कहते हैं जथा धृत्या सुनह पुच्छम तत्तुमिच्छेते सरितपतिम तथा त्यक्ता हरे सेवा मन्य उपासनया भवेत। भगवान की शरणागति को छोड़कर अन्य साधन द्वारा भवसागर पार जाने की कोई इच्छा करना वैसे ही है जैसे जहाज को छोड़ करके और कुत्ता का पूंछ को पकड़ लेना। तो कुत्ता का पूंछ को पकड़ के समुद्र से पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समुद्र देखे कि नहीं देखे? फिर नहीं देखे तो एक बार जगन्नाथपुरी में जाके समुद्र में देख लीजिएगा कैसे समुद्र का लहरी होता है। कुछ लोग होते समुद्र नहीं देख पाते ना, ऐसा जिस साइड में समुद्र नहीं तो वो कहां से है। जहाज को छोड़ के कुत्ता का पूंछ पकड़ना, इसी प्रकार जो जिसका शरणागति जाना चाहिए, जिन्होंने हमको मुक्ति दिला सकता है, ये धरती से उधार कर सकता है, और जिन्होंने ये जन्म मृत्यु चक्र से चक्र को काट सकता है, ये बंधन से काट सकता है, उनका शरण पे जाना चाहिए। लेकिन जितने सब असुर लोग होते हैं ना, एक एक असुर का नाम बताओ, ज्यादा से ज्यादा असुर लोग किसका भक्त है? ज्यादा से ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा देवता लोग के भक्त है, ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो देवता लोग का भक्त है। और देवता लोग का कनेक्शन है भगवान से, देवता लोग भी भगवान का साथ कनेक्शन है। कहते हैं जथा जथा अन्य देवे करे न दर्शन, कृष्ण दास बलितारे करे न वंदन। कहते हैं जब भी वह देवताओं के विग्रह को देखता है तो वह सोचता है कि भगवान कृष्ण के सेवक है। जितने सब देवता लोग भगवान कृष्ण को देखते हैं वो भी कहते हैं हमें कृष्ण का क्या है, सेवक है, दास है, वो सेवा करने में तत्पर है। तब वह उनको प्रणाम करता है, देवता लोग भी भगवान को प्रणाम करते हैं। और यहां पे स्वयं हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी जब सामने प्रकट हो गए तब यहां पे प्रणाम करता है। और प्रणाम करके इसी प्रणाम से संबोधित किया जाता है, शब्द आता है आद्याय। इसका पहले चार श्लोक में छह प्रकार के वर्णन है क्या क्या संबोधित करता है हिरण्यकशिपु। और ये श्लोक से काल महाराज ने जो श्लोक कहते हैं उसी श्लोक से मतलब 26 से लेकर 38 श्लोक तक ये हिरण्यकशिपु का स्तुतियां है, ब्रह्म स्तुति। प्रार्थना करके वर मांगेगा ब्रह्मा जी से, ये चाहिए वो चाहिए, आगे आएगा, ये स्तुति है। स्वयं हिरण्यकशिपु स्तुति कर रहा है ब्रह्मा जी का, स्तुति करके और ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उनको वर देने के लिए तैयार है, वरद हस्त से तैयार है वर देने के लिए। लेकिन जो ब्रह्मा जी का पास है नहीं है वो नहीं ले सकते, वो तो भगवान ब्रह्मा जी का पास है नहीं, श्री भी कृष्ण का पास है, कृष्ण का पास है और किसी का पास नहीं है। तब उन्होंने छह प्रकार के वर्णन किया जाता है। पहला आता है सो प्रकाशत्व, दूसरा है जगत प्रकाशत्व, मतलब जगत को प्रकाश देने वाले हैं, ये ब्रह्मा जी को संबोधन करके कहते हैं। फिर कहते हैं तत्कारणत्व, आप ही सभी कारणों का कारण है। और क्या कहते हैं जगत की सृष्टि आदि कर्तृत्व, आपसे ही जगत सृष्टि हुआ है। अरे उनको सृष्टि करने के लिए कौन है? फिर ब्रह्मा जी को स्वयं सृष्टि करने वाले और कोई है? स्वयं गर्भदक्षाई विष्णु का नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। लेकिन हिरण्यकशिपु कह रहे आप ही सृष्टि करता है। फिर कहते हैं महत्तत्व, ये महत्तत्व को प्रकट कौन कराया? और परमेश्वर इन्हीं छह बात का विस्तार से कहते हैं कि वह ब्रह्मा जी को नमस्कार करता है, ये कह करके हाथ जोड़ के नमस्कार करता है हिरण्यकशिपु ने। और कहते हैं विज्ञाय अर्थात कारण स्वरूपा, उसका कारण है कि जगत की आदि पुरुष है, ज्ञान और विज्ञान विषय रूप से होने वाले ज्ञान ही आपकी मूर्ति है, आपसे ही ज्ञान आता है। और ब्रह्मा जी भी ज्ञान ले रहा है कहां से? विष्णु से ले रहा है। और वो ज्ञान लेकर के हिरण्यकशिपु बोल रहे आपसे ही ज्ञान आ रहा है। और ये ज्ञान हम लोग को कैसा प्राप्त होता है? ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? गुरु परंपरा। इमं राजसे विदु सकालेन महताम जोगनष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसे विदु, ये परंपरा से आता है। और ये परंपरा ज्ञान भी टूट गया, ये परंपरा ज्ञान टूट गया, ये टूटने के नाते भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को ज्ञान दिया, पहले राजऋषि को दिया था, ये राजऋषि से ये परंपरा चल रहा। फिर जब असुर लोग प्रकट हो गए तब वो ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगा, तब फिर भगवान ने अर्जुन को दिया। लेकिन हमारा जो ज्ञान है ये ज्ञान हमें गुरु से प्रकट लेते हैं, तब कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब हमें गुरु को हृदय में धारण कर लेते हैं, गुरु निष्ठा होकर सेवा करते हैं, तब तो गुरु ही हमको प्रेरणा देते हैं। जब हमें गुरु निष्ठा भक्ति नहीं करेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलती, फिर कनेक्शन टूट जाता है। और ये गुरु क्या है, हमारा जो गोलोक वृंदावन जाने के लिए जो जहाज चल रहा है वो क्या है, कर्णधार है, वो लेकर पहुंचाएंगे। इसलिए गुरु का साथ हमारा कनेक्शन हमेशा रहना चाहिए, और गुरु ने जो बोला है इसको हमें पूरा जीवन भर के उतरना चाहिए, नहीं तो हमारे गुरु से क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। अब कनेक्शन टूटने के बाद है हमें आगे जा भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। तब यहां पे कहते हैं विजय अथ कारण स्वरूपा, उसका कारण है कि वे जगत की आदि पुरुष है। ज्ञान और विज्ञान विषय रूप से होने वाले ज्ञान ही आपकी मूर्ति है। इसके द्वारा हिरण्यकेशिपु ने ब्रह्मा जी को शोक प्रकाश कहा और जगत प्रकाश बतलाया। विजय कहकर के उसने ब्रह्मा जी को निमित्त कारण कहा, उनका जगत का उपादान कारण बतलाते हैं। कहा प्राण आदि विकारों के द्वारा ब्रह्मा जी कार्य रूप में व्यक्त होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को कह करके संबोधन करके नमस्कार करता है। ऐसे कह करके नमस्कार करता है लेकिन यह हमको जानना चाहिए, असुर लोक का कभी इच्छा पूर्ति नहीं होता है। एक कहते हैं आप किसी जगह पे जाओगे, आपका भिक्षा का पात्र मांगने के लिए जाओगे, भिक्षा का पात्र पूर्ण हो सकता है लेकिन इच्छा का पात्र पूर्ण नहीं होता है। असुर लोक इच्छा करते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए कहते हैं हमें भक्त बन गए, संत बन गए, भगवान की कथा और ईशान की व्यथा बेअंत है। जो समझ गया वो संत है। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा ये बेअंत है, उसका अंत नहीं होता है। ना भगवान की कथा का अंत है और व्यक्ति का क्या है, व्यथा, इसका भी अंत नहीं है। और जो समझ गया वो क्या है, संत है। तब हमें क्या बनना चाहिए, हाँ जोर से बोलिए, संत बनना है। तो मेरा पीछे हाथ जोड़ के बोलिए, त्राही विष्णु जगन्नाथ मग्न संसार सागरे माम उधार अस्माद, माम उधार अस्माद गोविंद कृपा पांग बिलोकनाथ। जनार्दन जगत बंधु शरणांगत पालक तो दास दास दासोत्तम दासस्य देहि मे प्रभु, दासस्य देहि मे प्रभु। हे विष्णु हे जगन्नाथ, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं। सही क्या डूब रहे है क्या, सभी लोग तो ऐसा बैठे कहां डूब रहा है, ये तो पानी है नहीं, बोलो भाई आप रक्षा कीजिए। हे गोविंद आप अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से मेरा संसार सागर से उद्धार करें। हे जनार्दन, हे जगत बंधु, हे शरणागत पालक, कृपया मुझे दास को अपने दास के दास की दासत्ता प्रदान करे। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब इस प्रकार ये प्रार्थना आगे आगे चलते रहेगा। 26 श्लोक से 38 श्लोक तक ये स्तुति आप सुनते रहेंगे, ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे। ये 38 नंबर श्लोक में संपूर्ण होता है, ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना समय देने के लिए। श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।